ஆனந்தே தாய் கோர் பிரிமானந்தே. ஸ்ரீ ஸ்ரீ கௌர் கதாதர் பகவான் கி, ஸ்ரீ சம்பாஹட்டி தாம் கி, ஸ்ரீ ஜெயதேவ் கோஸ்வாமி மகாராஜ் கி, கௌரங்க மகாபிரபு கி, யுக தர்ம ஹரிதாம் சங்கீர்த்தன் கி, குலத்வீப் தாம் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. தோ ஆப் சப்கா சம்பாஹட்டி தாம் கோலத்வீப் மே சப்கா ஸ்வாகத் ஹை. ஹரி போல். இத்தனா ரமணிக் ஸ்தான் ஹை, குச் வர்ணன் கர்னே கி ஜரூரத் நஹி, ஆப் தேக் சக்தே ஹை. பகவான் நே பி ஐசா வாதாவரண் பனா கே ரக்கா ஹை, நா தூப் ஹை நா சாவ் ஹை, தண்டக் ஹவா பஹ ரஹி ஹை, சப் ஜகா ஹரியாலி ஹை, வன் கா திருஷ்ய ஹை. சார் தின் பஹலே பஹுத் பயங்கர் வர்ஷா ஹோ ரஹி தி, யாத்திரா ஹோகி கி நஹி ஹோகி ஐசே ஹமாரே பாஸ் சிந்தா தி, லேக்கின் பகவான் நே ஆப் பர் சப்கே ஊபர் படி கிருபா கி ஹை. ஹரே கிருஷ்ணா. பாபா ஆப்கா நாம் கியா ஹை?
மேரா நாம் நித்யானந்த பிரபு, நிதாய் பிரபு நித்யானந்த
பிரபு ஸ்ரீ ராதே ஷ்யாம். ஓ ஜோ பாபா ஜி மஹாராஜ் சே ஓ ஓ லக்ன கரந்த பாபா ஜி மஹாராஜ்.
ஹாஂ, நயனானந்த பாபா,
நயனானந்த பாபா, நயனானந்த ஜெய் ஹோ. ஜெய் கௌர் கதாதர் கி. ஆப் நிதாய் பிரபு ஹை, யா கே மடாதீஷ் ஹை, ஒரு யா பர் சேவா கரதே ஹை, கை சால சே யா பர் சேவா கர ரஹே ஹை. ஜப் ஹம் பஹலே ஆயே தே யா பர் தோ பஹுத் சாரா மந்திர் பஹுத் ஜீர்ண அவஸ்தா மே தா. ஆஜ் ஆப்கே ஆனந்த் கே லியே இன்ஹோனே இத்னா பஹுத் சுந்தர் மந்திர் பனா கே ரக்கா ஹை, ஓர் மந்திர் கா ஜீர்ணோத்தார் சல் ரஹா ஹை. இஸ்லியே கௌர் கதாதர் கி விக்ரஹ ஜோ ஹை வோ கம்ரே மே ரக்கே ஹுவே ஹை. நஹி தோ யே சாம்னே ஜகஹ ஜோ திகாயி ஆப்கோ வோ கௌர் கதாதர் ஜி கா ஸ்தான் ஹை. லேக்கின் மா மஹாராஜ் ஜி பஹுத் பிரேம் சே இஸ் மந்திர் கா ஜீர்ணோத்தார் கர ரஹே ஹை. ஓர் ஆப் சப்சே வினதி பி ஹை கி யே பஹுத் பிராச்சீன் ஸ்தான் ஹை, ஐதிஹாசிக் பிராச்சீன் ஸ்தான் ஹை, யஹான் பர் பஹுத் சுந்தர் சுந்தர் லீலாயே ஹுயி ஹை. தோ இஸ் ஸ்தான் கோ ஜதன் கர்னா பஹுத் ஜரூரி ஹை. தோ ஹம் லோக் தோ கபி கபி ஆதே ஹை, லேக்கின் மஹாராஜ் ஜி யஹான் பர் ரோஜ் ரஹதே ஹை ஓர் சேவா கர்தே ஹை. தோ ஆப் லோகோ கோ ஜிஸ்கோ பி ஸ்ரத்தா ஹோ, ஜிஸ்கோ பி பிரேம் ஹோ, ஜிஸ்கோ பி பாவனா ஹோ, ஆப் இஸ் மந்திர் கோ பனாயே ரக்னே கே லியே ஜீர்ணோத்தார் கே லியே ஜோ சஹாயதா ஆப்கே மன் மே கர்னி ஹோ ஆப் கர் சக்தே ஹை. பாபா ஜி மஹாராஜ் ஆப்கி சஹாயதா கோ ஸ்வீகார் கர் சக்தே ஹை. ஜெய் ஹோ ஸ்ரீ ராதே ஷ்யாம். க்யோங்கி ஹம் லோக் தோ பம்பை மே ரஹதே ஹை, பம்பை சே ஆதே ஹை, கபி கபி ஆதே ஹை. லேக்கின் அகர் ஹம் கபி கபி ஆதே ஹை ஓர் ஹம்கோ யே ஸ்தான் வைசே ஹி ஹோனா சாஹியே, அகர் ஹமாரி ஐசி இச்சா ஹை தோ யே ஸ்தான் பன்னா பி படேகா நா. அது ஜீர்ண ஹோஜாயா, டூட் ஃபூட் ஜாயா, சப் குச்சு ஹத்தம் ஹோஜாயா, தோ ஹம் லோக் க்யா தேகேங்கே, போலேங்கே கி அரே யஹான் பர் பஹலே மந்திர் ஹுவா கர்தா தா, யஹான் பர் ஐசே ஐசே தா, ஐசே காலி ஐசே கதா கர்தே பேட்டேங்கே, கால்பனிக் கதா ஹை நா. லேக்கின் கௌர் கதாதர் ரஹேங்கே, உன்கி சேவா ஹோகி, பூஜா ஹோகி, இஸ் ஸ்தான் கா மஹாத்மிய பனா ரஹேகா. தோ ஆப் ஆயேங்கே, ஆப்கே பச்சே ஆயேங்கே, பச்சோ கே பச்சே பி ஆதே ரஹேங்கே, தோ உன்கோ தர்ஷன் மில்தா ரஹேகா, குச்சு ஸ்தான் ரஹேகா பைட்னே கே லியே, கதா கர்னே கே லியே குச்சு சுவிதா ரஹேகி. இஸ்லியே நிதாய் பிரபு ஜெய சந்த லோக் யா ரஹதே ஹை தோ யே ஜகஹ பனி ரஹேகி, ஓர் ஹம் லோக் ஆதே ரஹேங்கே, ஹாம் புட்டே ஹோ ஜாயேங்கே ஃபிர் பி ஆயேங்கே, தபி ஸ்தான் பனா ரஹேகா. அபி யே பன் கயா ஹை தோ கம் ஸே கம் 50 சால் ஓர் ரஹேகா அச்சி தரஹ சே ஹை நா. தோ யே ஹமாரா ஜோ சேவா புண்ணிய யஹான் பர் தான புண்ணிய ஹம் கரேங்கே வோ நா கேவல் ஹமாரே லியே லேக்கின் ஆகே லோகோ கே லியே பி, பீடி கே லியே பி இஸ்கா சஹாயதா ஹோகி ஹை நா மஹாராஜ் ஜி. ஜெய் ஸ்ரீ ராதே ஷ்யாம். தோ யே ஜெய்சே மேனே கஹா, நிதாய் பிரபு ஜெயதேவ் கோஸ்வாமி கௌன்சே சால் மே ஹுயே தே? 800 சால் பஹலே. ஹாம், ஜெயதேவ் கோஸ்வாமி நாம் கே பஹுத் பிரசித்த சந்த் ஹுயே ஹை. ஜெயதேவ் ஜி கோஸ்வாமி மஹாராஜ் ஜோ ஹை வோ சைதன்ய மஹாபிரபு கே பி பஹலே ஹை. சைதன்ய மஹாபிரபு அபி 1486 மே உன்கா ஜன்ம் ஆவிர்வாவ் ஹுவா ஹை, ஓர் பாக்கி ஜித்னே கோஸ்வாமி ஹை, ரூப கோஸ்வாமி, சனாதன கோஸ்வாமி, வோ உன்கே பாத் கே பீடி ஹை. தோ ஜெயதேவ் கோஸ்வாமி 800 சால் பஹலே, மத்தலப் கித்னே சால் மே ஹோங்கே? 1400 அரவுண்ட், ஹாம் 1400 கே ஆஸ்பாஸ். தோ ஜெயதேவ் கோஸ்வாமி கிஸ் வஸ்து கே லியே பஹுத் ஃபேமஸ் ஹை? கீத் கோவிந்த். பூரே வைஷ்ணவ சம்பிரதாயோ மே, சம்பிரதாய மே நே அனேக் வச்சன், ஜித்னே பி சம்பிரதாய வைஷ்ணவோ கே ஹை வோ சப் கே सर आंखों पर गीत गोविंद है, क्योंकि गीत गोविंद वो काव्य है जो राधा कृष्ण की सबसे निकट उत्कट अंतरंग लीला के बारे में उसमें वर्णन है। इसलिए गीत गोविंद जो है वो सामान्य आदमी के लिए वैसे योग्य नहीं है, क्योंकि सामान्य आदमी समझ ही नहीं पाएगा उसके अंदर क्या लिखा है। इसलिए PhD सब्जेक्ट मैटर, भक्ति के विषय में सबसे ऊंची जो अनुभूतियां हैं, साक्षात्कार हैं, वो सबका उत्कट राधा कृष्ण का संबंधों का जो वर्णन है, उनकी लीलाएं हैं, उनका जो अलग अलग प्रकार का भाव है, उस भाव को गीत गोविंद जैसे सुंदर काव्य में उसका रचना किया गया है। और वो गीत गोविंद जो है उसकी रचना जयदेव गोस्वामी ने इस वन में की है जहां पर आप बैठे हैं। तो उस समय जब जयदेव गोस्वामी नवद्वीप में वास कर रहे थे, एक जगह है जो अभी नहीं रही है, जैसे मैं बताया आपको ना, जैसे कलयुग आगे बढ़ता है, कलयुग के प्रभाव से इन स्थानों का महत्व जो है वो लोग समझते नहीं है। जैसे मैंने अभी उधर जब मैं चल रहा था विष्णुप्रिया के मंदिर से, मैं विष्णुप्रिया के मंदिर तक जब आ रहा था मैं रिक्शा से, तो रिक्शा ने मुझे उतारा तो मैंने पूछा कि विष्णुप्रिया का मंदिर कहाँ है, एक घर में पूछा मैंने, तीन कन्याएं थी वहां पर, वो बोली पता नहीं मुझे, वहां से 3 मिनट के अंतर पर था वो, लेकिन वो बता नहीं पाए कि वो राइट टर्न में है। क्या मतलब है इसका कि धाम में जन्म होने के बाद भी लोगों को उसका महत्व तो समझता नहीं है। इट्स लाइक हमारे घर के पास वो सिद्धिनायक का मंदिर था, बचपन से हजारों लाखों लोग लाइन लगाते हैं वहां ट्यूजडे को, हम कभी कभी जाते थे, लेकिन दुनिया कहां कहां से आती है वहां पर, हा? बाहर के लोगों को उसका इंपॉर्टेंस है, जो वहां रहते हैं उनका कोई वैल्यू नहीं उसकी। गंगा जी किनारे में ऋषिकेश में हरिद्वार में लाखों लोग रहते हैं, आप उनको पूछेंगे आपने स्नान किया, कभी स्नान किया था आपने, बोले कई साल हो गए स्नान नहीं किया, लेकिन वो लोग साउथ इंडिया जाएंगे और नर्मदा में स्नान करके आएंगे, गोदावरी में स्नान करके आएंगे, हाँ और कहीं जाके दूर घूम के आएंगे, ट्रेन वेन करके थक के आएंगे, वहां जाके स्नान करेंगे, बोले वो तो अच्छा लगा बोलता, लेकिन तुम्हारे घर के बाहर गंगा जी बह रही है जिसको स्नान करने के लिए दुनिया भर के लोग आते हैं, हाँ इतना महात्म्य सुनते हैं उसका। तो ये सब कलयुग का प्रभाव है, कलयुग के प्रभाव में। और इसका एक कारण ऐसा है कि भारत है ना, ये सब पवित्र स्थानों का एक खजाना है। अरे किसी भी दिशा में देखो एक पवित्र स्थान मिलेगा आपको, कहीं भी जाओ सब भूमि पवित्र है, इन भूमि के अंदर सब भगवान के अवतारों ने अपना लीला किया है, सब भगवान के जितने भी अवतार हुए सबकी चरण धूलि यहां पर लगी हुई है, भगवान के जितने संत भक्त हैं वो सब लोग भारत में निवास करते हैं, भारत संतों की भूमि है। आपको पता है भारत की व्याख्या क्या है, भा और रथ, भा यानी राधा कृष्ण के प्रति प्रेम, राधा कृष्ण के प्रति भक्ति, और रथ यानी जिस देश में राधा कृष्ण के प्रेम में लोग रथ रहते हैं वो भारत देश, ऐसी इसकी व्याख्या है। है कोई हम लोग भारतवासी सच्चे रूप में? नहीं, हम लोग तो ऐसे बॉम्बे वासी, दिल्ली वासी, कलकत्ता वासी, भारतवासी नहीं हम सच्चे अर्थ के रूप में। और जगह जगह पर पवित्र स्थान पड़े हुए हैं, इसलिए वैल्यू बहुत कम है। जैसे मुसलमान धर्म जो है उसका एक ही पवित्र स्थान है, मक्का और मदीना, और दुनिया में कोई पवित्र स्थान नहीं है, इसलिए उसको इतना संभाल के रखा है, उनका सारा जो एग्जिस्टेंस है धर्म का वो मक्का मदीना पर डिपेंड है। मैंने सऊदी अरब में 2 साल काम किया है, इतना उसको सजा के रखा है, इतना बढ़िया बना के रखा है कि गवर्नमेंट जो है उसको, जो राजा है उसका नाम क्या है, द कस्टोडियन ऑफ द 2 होली मॉस्क, उसकी पदवी यही है, 2 पवित्र मस्जिद जो है उसका राखणकर्ता, ये उसकी पदवी है, बाद में किंग जो भी लगाए नाम। क्रिश्चियन धर्म में केवल एक ही जगह है जेरूसलेम, और एक ही कथा है जीसस क्राइस्ट को क्रॉस पर चढ़ाया गया, सब उनका धर्म जो इसी एक घटना के आसपास घूम रहा है, इसलिए उसको वैल्यू है। न केवल वो खुद पालन कर रहे हैं और लोगों को कन्वर्ट भी करने का प्रयास करते हैं। तो हमारा कैसा है, हर दिशा में हर कोने में अपना पवित्र स्थान है, हाँ ब्रिज के नीचे, ब्रिज के ऊपर, सब जगह मंदिर है, इसलिए उनको वैल्यू नहीं है उसकी। अभी एक नवद्वीप धाम में अगर आप लोग मुझे 1 महीना देंगे ना, 1 महीना 30 दिन, तो भी यहाँ के स्थान और कथाएं समाप्त नहीं होंगी, इसकी गारंटी है। वो भी मेरा सीमित तो नॉलेज है उसके ऊपर कह रहा हूं मैं, नॉलेज तो यहां का अगाध है, अनंत है, जगह भी अनंत है, लेकिन इतनी जगह होने पर क्या होता है? अरे सब जगह सोने का दुकान में कैसे होता है, चारों तरफ सोना होता है, किधर भी देखो सोने का गहना लगा हुआ है, ज्यादा वैल्यू रहती नहीं उसकी फिर। इसलिए हमारे पवित्र स्थान धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं, नजर नहीं आते हैं। वैसे ही जगह में ये बात मुझे कहां से याद आई, बल्लाला दीर्घिका नाम की एक जगह है, मतलब थी, अभी नहीं दिखाई पड़ती, वो जहां पर जयदेव गोस्वामी रहा करते थे, उनका घर था वहां पर, वो गंगा जी के उस किनारे मतलब अंतरद्वीप में था, वो बल्लाला दीर्घिका वहां पर उनकी झोपड़ी थी, और वहां पर जयदेव जी और उनकी पत्नी पद्मा रहती थी। इनकी विवाह की कथा बहुत अद्भुत है। ये जगन्नाथपुरी में ब्रह्मचारी के रूप में रहते थे जयदेव जी। जगन्नाथ जी ने उनको व्यक्तिगत आदेश दिया स्वप्न में आकर, कल आपके पास एक ब्राह्मण आएगा, एक कन्या को लेकर आएगा, उससे आपको विवाह करना है। तो उसको लगा कि ये ऐसा ही मनगढ़ंत सपना है, सब झूठ है, जो भी आएगा मैं उसको मना कर दूंगा। तो ब्राह्मण आया कन्या को लेकर, उसको जगन्नाथ ने स्वप्न दिया था कि कल तुम एक साधु की कुटी में जाओगे, उसको अपनी कन्या अर्पण कर देना, वो ब्रह्मचारी है लेकिन वो गृहस्थ बनेगा आपके लिए। जब गए तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं तो ब्रह्मचारी हूं, मुझे कोई इच्छा नहीं शादी करने की। फिर जगन्नाथ ने दोबारा स्वप्न देखा और स्वप्न में डांटा उनको, मैंने कहा था ना आपको, क्यों मना कर रहे हो? तो फिर उन्होंने शादी किया उनसे, और वो है पद्मा देवी, जिनको लेकर फिर वो भगवान के आदेश के अनुसार नवद्वीप में आए और बल्लाल दीर्घिका इस जगह पर रह रहे थे। और वहां रहकर उन्होंने दशावतार स्त्रोत्र लिखा। हम लोग ने गाया ना, तव कर कमल वरे नखाम अद्भुत श्रृंगम दलित हिरण्य कशिपु तनुभृंगम केशव धूधृता नरहरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। ऐसे ये नरसिंह भगवान का श्लोक है। ऐसे मत्स्य अवतार, कुर्म अवतार, वराह अवतार, वामन अवतार, नरसिंह अवतार, फिर सभी अवतारों का उसमें उल्लेख है, दशावतार स्तोत्र ये उन्होंने लिखा। तो उस समय यहाँ पर एक किंग था, राजा था, लक्ष्मण सेन उसका नाम था, उसके हाथ में ये दशावतार स्तोत्र आया और इतना वो प्रभावित हो गया कि उसे पूछा किसने लिखा है। तो सब लोगों ने बताया कि यहाँ पर एक संत हैं जयदेव गोस्वामी, उन्होंने लिखा है इसको। तो दर्शन की अभिलाषा मन में उत्पन्न हुई उनकी, लेकिन वो जानते थे कि संत लोग राजाओं का दर्शन नहीं करते। जिनके पास ऐश्वर्य है, संपत्ति है, पत्नी है, बालक है, पैसा है, उनका संग साधु लोग नहीं करते। तो फिर वो उनको मिलने की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए एक वैष्णव बनकर सिंपल नंगे पैर गए उनके पास, कोई सैनिक नहीं आगे पीछे, कोई वर्दी नहीं, कुछ नहीं, और गए। फिर भी जयदेव जी ने उनको पहचाना कि राजा है, तो उन्हें साफ उनको बोल दिया कि जो लोग भौतिकतावादी है उनसे मैं नहीं मिलता और ना मिलना चाहता हूं। राजा ने कहा कि मैं आपको विनती करने आया हूं कि आप यहां पर क्यों रह रहे हैं, हमारे महल में आके रहिए, वहां भजन कीजिए। उन्होंने बिल्कुल भी नहीं आऊंगा, आप सब लोग ऐश्वर्य, पत्नी, स्त्री, धन दौलत के बीच में रहते हो और हमें आपसे कोई काम नहीं। तो राजा ने कहा कोई बात नहीं, आप मुझे मत मिलना, मेरे घर पर भी मत आना, लेकिन गंगा जी के उस पार कुलद्वीप में एक सुंदर जगह है जिसका नाम है चंपाहटी, चंपा का वन है यहाँ पर, वहाँ पर आपके लिए मैं जैसे आपको चाहिए, कोई ऐश्वर्य संपन्न नहीं, सिंपल सी आपको जैसी इच्छा है वैसी झोपड़ी बना देंगे आपके लिए, और वहाँ पर आप रहना, और मैं कभी भी आपके इच्छा के बिना आपके मिलने नहीं आऊँगा, लेकिन जब आप परमिशन देंगे तब आपको मिलने आऊँगा, ऐसी सुविधा देन रखने की आपको विनती करता हूँ। तो जयदेव जी बड़े प्रसन्न हो गए, उन्होंने कहा मैंने जानबूझकर आपको भौतिकतावादी व्यक्ति कहा आपको टेस्ट करने के लिए, लेकिन आप सच में वैष्णव हो, भक्त हो, इसलिए मैं आपकी इच्छा को स्वीकार करता हूँ, आप मेरे लिए झोपड़ी बांध सकते हो। तो फिर उन्होंने गंगा जी के इस किनारे पे जहाँ पर हम बैठे हैं, अभी तो उनका घर भी नहीं रहा लेकिन यहीं पर उनका घर था, कुटिया थी, वहाँ पर उन्होंने कुटिया बांधी उनकी। और ये जो जगह है, इस जगह का महात्म्य उन्होंने बताया कि जगह ये ऐसी है कि भगवान की 8 सखियां हैं। हाँ आप देखते हैं ना मायापुर मंदिर में, याद है कैसे आपको याद रखना है उनको? बहुत सिंपल तरीका है, सब ध्यान से सुनना। हाँ, बीच में माधव जी खड़े हैं, उनके बाजू में कौन है? राधा रानी खड़ी है। भगवान के बाजू में कौन खड़ी है? ललिता देवी। राधा के बाजू में कौन खड़ी है? विशाखा देवी। इतना आपको याद तो आराम से रहेगा, ललिता विशाखा। ललिता के बाजू में चंपक लता, ता और ता, चंपक लता। विशाखा के बाजू में इंदुलेखा, विशाखा इंदुलेखा। सिंपल, एक सखी चंपक लता, एक यहां पर इंदुलेखा, फिर दो यहां बचे, दो यहां बचे। तो ये जो जो इंदुलेखा है, इसके बाजू में दो देवियां खड़ी है, दो देवियां, रंग देवी और सुदेवी। ये जुड़वा बहनें हैं, रंग देवी सुदेवी, दो देवी यहां पर हो गई, दो बची चित्रा और तुंग विद्या, वो चंपक लता के आगे खड़ी है, चित्रलेखा और तुंग विद्या देवी। इस तरह से ये आठ सखियां हैं भगवान की, राजा रानी की। तो उसमें जो चंपक लता सखी है उसका ये वन है, और इस वन में चंपा के फूल खिलते हैं, अभी तो दिखाई नहीं पड़ते, तो चंपा के फूल खिलते हैं, और वो चंपा बिन बिन कर यहां पर राधा कृष्ण की बड़ी प्रेम से सेवा करती है, इसलिए इस वन का नाम है चंपाहाटी। और चंपाहाटी क्यों पड़ा? क्योंकि कलयुग के प्रभाव से जब समय आगे चला गया तो बहुत सारे बिजनेसमैन लोग यहाँ पर आए, व्यापारी लोग, देखा कि बहुत सारे फूल हैं यहाँ पर, तो उन्होंने यहाँ पर फूल का मार्केट लगा दिया और फूल को बेचने लगे, इसलिए क्या हुआ नाम हाट, हाट यानी बाजार, चंपाहाटी ऐसे नाम पड़ गया उनका। बहुत पुरानी बात है, नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी को लेकर यहाँ पर आए थे, स्वयं बलराम जी के अवतार नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी को लेकर यहाँ पर यात्रा करवाने आए थे। तो स्वयं नित्यानंद प्रभु बताते हैं कि यहाँ पर पहले चंपा का वन हुआ करता था, चंपक लता देवी का, आगे जाकर व्यवहार के रूप में, व्यापार के रूप में लोगों ने इसको हाट बना दिया, बाजार, तो ये चंपाहाटी नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो ऐसी इसकी कथा है। और मैंने आपको वहां बताया कि कमल की सखी जो थी सत्ययुग में ब्राह्मण के रूप में यहाँ पर भगवान की सेवा के रूप में यहाँ पर रहते थे ब्राह्मण जी, जो कमल की सखी का अवतार थे। तो कमल की सखी के सेवा के कारण प्रभावित होकर वो भी चंपा के फूल अर्पण करते थे भगवान को। तो गौरांग महाप्रभु ने उनको दर्शन दिया और बताया कि आप से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, और आप मेरे कलयुग के गौरांग महाप्रभु के अवतार में भी अवतार लेंगे, दोबारा आएंगे, और आपका नाम होगा द्विजवाणी नाथ, जो राधा रानी का अवतार गदाधर पंडित, उसके छोटे भाई के रूप में आप पर यहाँ पर आएंगे। तो उनका भी घर यहाँ पर था। तो जब नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी को लेकर यहाँ पर आए, तो उस समय तो चैतन्य महाप्रभु की लीला भी समाप्त हो चुकी थी। तो उस समय नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी को लेकर द्विज वाणीनाथ के घर पे रुके, रात को विश्राम किया, उनके घर में भोजन किया, फिर यहाँ से आगे चले गए। ऐसा ही सुंदर स्थान है। तो यहाँ पर जब लक्ष्मण सेन के द्वारा कुटिया बनाने के बाद में जयदेव जी और पद्मा देवी जी रहने लगी, तो वो यहाँ से चंपा के फूल बिनकर पद्मावती देवी अपने पति को लाकर देती थी। फिर पति राधा कृष्ण भगवान के सेवा में उन फूलों को अर्पण करते थे बड़े प्रेम के साथ में, और बड़े आनंद से वो यहाँ पर रहते थे। तो उस समय जब यहाँ पर आए वो, तो उन्होंने गीत गोविंद को लिखना आरंभ किया। एक और कथा है, तो श्री चैतन्य महाप्रभु उनके राधा कृष्ण की सेवा जो उन्होंने स्वीकार किया पुष्प के रूपों में, चंपा के रूप में, तो प्रसन्न होकर भगवान ने उनको दर्शन दिया गौरांग महाप्रभु के रूप में। और गौरांग महाप्रभु के रूप में दर्शन देने के पश्चात दोनों लोग दर्शन देने के लेने के बाद बेहोश हो गए। तो चैतन्य महाप्रभु का वर्णन किया यहाँ पर, उनका जो दर्शन था वो चंपा के फूल के समान के रंग था उसका, हजारों सूर्यों के समान उनके आभा थी उनके चेहरे पर, जो हजारों सूर्यों को भी लज्जित कर रही थी, ऐसी आभा उनके चेहरे पर थी। हाँ, और जैसे कि पिघला हुआ सोना होता है वैसा उनका रंग था चंपा के फूल की तरह, और उनका जो आभा थी वो चारों दिशाओं में फैली हुई थी। उनका दर्शन करके जयदेव जी और पद्मावत दोनों बेहोश हो गए, फेंट हो गए। तो स्वयं भगवान गौरांग महाप्रभु ने उनको अपने हाथों से दोनों को उठाया और कहा कि आप दोनों बहुत महान भक्त हो, इसलिए मैं आपको दर्शन देने के लिए बहुत लालायित था। बहुत जल्दी मैं सची माता के गर्भ में नदिया में जन्म लेने वाला हूं कलयुग में, और सारे मेरे भक्त जितने भी अवतार हुए हैं उन सारे अवतारों के जितने भी भक्त हुए हैं संत को सबको लेकर मैं आऊंगा और सब लोगों को यहाँ पर प्रेम और कृष्ण भक्ति का दान दूंगा संकीर्तन के रूप में। 24 साल के बाद मैं संन्यास लूंगा और नीलाचल यानी जगन्नाथपुरी में रहूंगा। वहां पर मैं भक्तों के संग में रहकर प्रेम और भक्ति के अंदर सागर में डूब जाऊंगा। मेरे भक्त लोगों को सागर में डुबाऊंगा प्रेम के, और आप तभी निश्चित रूप से आपकी जो सेवा आप कर रहे हो उसके कारण आप जीवन के अंत में दिव्य लोक में नवद्वीप धाम जो गौलोक धाम के अंदर है उसमें प्रवेश करोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये मैं निश्चित बात कह रहा हूँ। और आप अभी यहाँ से नीलाचल जगन्नाथपुरी चले जाना जहाँ पर आप भगवान जगन्नाथ को सेवा करके प्रेम भक्ति को प्राप्त करोगे। तो ये सुनकर गौरांग महाप्रभु अदृश्य हो गए और फिर दोनों गौरांग महाप्रभु के विरह की भावना में बेहोश हो गए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जब जगे बेहोशी से तो बहुत रोए कि पता नहीं हमारे हाथ से क्या अपराध हुआ है, इतने सुंदर नवद्वीप धाम से गौरांग महाप्रभु हमको जाने को कह रहे हैं। बड़े दुखी हो गए, वो सोचते हमारे हाथ से कुछ अपराध हो गया होगा, लेकिन भगवान का आदेश है तो जाना होगा, तो जाने लगे। क्योंकि जब लक्ष्मण सेन यहाँ पर आए थे उन्होंने विनती की थी कि यहाँ रहो हम कुटिया बांधेंगे हमारे घर पे आओ, तो उन्होंने कहा कि आप ज़्यादा विनती करेंगे तो हम लोग छोड़ के जगन्नाथपुरी चले जाएंगे गंगा जी को पार करके। तो चैतन्य महाप्रभु ने फिर आकाशवाणी में उनको दर्शन दिया जब वो रो रहे थे कि हमारे ऐसे कुछ अपराध हुआ क्या। तो आकाशवाणी क्या बोली कि आपने पहले एक बार जगन्नाथपुरी जाने का कुछ कहा था, आपने जाना है आपको, जगन्नाथ भगवान आपको देखने के लिए बहुत लालायित थे, ही वॉन्ट्स टू गिव दर्शन टू यू, इसलिए आप ये मत समझना कि हम आप किसी आपने कोई अपराध किया है इसलिए आपको जाना पड़ रहा है। जगन्नाथ जी आपको दर्शन देना चाहते हैं और आप पर कृपा करना चाहते हैं, और फिर उनकी कृपा से आप दिव्य नवद्वीप धाम गौलोक धाम के अंदर जो है वो निश्चित रूप से प्राप्त करोगे, इसलिए दुख मत करना। फिर दोनों यहाँ से चले गए और जा रहे थे तो पीछे पीछे बार बार मुड़कर देख रहे थे, इतना सुंदर धाम फूलों फलों से सजा हुआ, वृक्षों से बेली से सजा हुआ, जहाँ पर गौरांग महाप्रभु का आविर्भाव होने वाला है आगे जाकर, इतना पवित्र धाम। गौरांग महाप्रभु बता रहे थे कि मेरा दिव्य धाम है, यहाँ पर मैं अवतार लूंगा। तो बार बार नदी को पार करते हुए बार बार मुड़ के देखने लगे, नदी पार किया फिर भी एक बार आंखों से आंसू लेकर इसको मुड़ के देखा। हमको भी ऐसा ही करना चाहिए, हाँ, जब ये नवद्वीप धाम के अलग अलग स्थान हम छोड़ते हैं बार बार देखना चाहिए। क्यों देखना चाहिए? क्योंकि इस धाम का जो 3D पिक्चर है ना, 3D, इसको हृदय में उतारना है आपको। हाँ, ये तो वीडियोग्राफी हम लोग कर रहे हैं, ये कितना होता है 2D, इनका फोटोग्राफ कैसा है, फोटोग्राफ 2D है ना, और कितना भी आपने इसमें कोशिश किया फिर भी आपको ये जो एक्सपीरियंस मिल रहा है ना वो वीडियो में भी नहीं मिलेगा। वीडियो में तो हम क्या क्यों कर रहे हैं कि कम से कम 10% तो याद आएगा ना, इसलिए वीडियो निकाल के रखते हैं, लेकिन जो यहाँ पर बैठकर आपको 3D स्पिरिचुअल जो अनुभव मिल रहा है वो आपको अपने हृदय में कैप्चर करना है। बार बार मुड़के क्यों देखना है? यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, एटमॉस्फियर है, वो आपको एब्सॉर्ब करना है, अपनी आत्मा को स्पंज की तरह सोक करना है, उसको पूरा खींचना है उसके अंदर। उसी भाव से नवद्वीप धाम को हृदय में उतारने के लिए, उसकी स्मृति बनाए रखने के लिए जयदेव जी महाराज और उसकी पत्नी बार बार मुड़कर देख रहे थे। फिर आगे चल के वो जगन्नाथपुरी चले गए, वहाँ जगन्नाथ का दर्शन हुआ और जगन्नाथ के दर्शन से वो बड़े प्रसन्न हो गए। ये दोबारा जगन्नाथपुरी, मतलब विवाह के पहले ब्रह्मचारी थे वहाँ थे, अब विवाह के बाद दोबारा जा रहे हैं वहाँ पर। तो चैतन्य महाप्रभु ने एक और बात बताई जब दर्शन दिया महाप्रभु जी ने कि जब मैं गौरांग महाप्रभु के रूप में आऊंगा तो आप जो लिखेंगे गीत गोविंद आपके द्वारा लिखा जाएगा वो मैं हमेशा उसका आनंद लूंगा, हमेशा गीत गोविंद का आनंद लूंगा। तो आपको ये सुनकर खुशी होगी कि जगन्नाथपुरी में स्वयं जगन्नाथ भगवान भी इस गीत गोविंद के बड़े चाहते हैं, हाँ, चाहने वाले हैं। जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ भगवान अनंत वेश करते हैं, बड़े वो क्या कहते हैं उनको, ललित माधव कहते हैं उनको, उनका मतलब है कि जो बहुत अलग अलग प्रकार का सुंदर श्रृंगार करते हैं, उनको बड़ा शौक है अलग अलग श्रृंगार करने का। तो रात को उनका होता है एक श्रृंगार, बड़ श्रृंगार वेश, वो रात को होता है। और कार्तिक में एक विशेष उनका बड़ श्रृंगार वेश होता है, बहुत देर रात में होता है उनको, रात को चंदन लगाते हैं शरीर पर, बहुत सुंदर दर्शन, इतना सुंदर दर्शन होता है। तो उस बड़ श्रृंगार वेश में वो एक ऐसा वस्त्र धारण करते हैं अपने सर पे, जो वस्त्र के ऊपर गीत गोविंद का पूरा काव्य लिखा रहता है, उसको कहते हैं गीत गोविंद खंडुआ। वो गीत गोविंद खंडुआ वो धारण करते हैं और चंदन लगा लेते हैं, फिर भक्त लोग बैठकर उनके सामने गीत गोविंद गाते हैं उनके आनंद के लिए, और अपने ही लीलाओं के बारे में, राधा रानी के संग में जो लीलाएं करते हैं भगवान, उसके विषय में जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद को खुद सुनते हैं और आनंद प्राप्त करते हैं। यही गीत गोविंद जो है वो जगन्नाथपुरी में, जब चैतन्य महाप्रभु, जैसे इन्होंने मना कर दिया राजा से मिलने के लिए, वैसे महाप्रभु चैतन्य जब जगन्नाथपुरी में थे तो राजा प्रताप रुद्र थे, उन्होंने भगवान को मिलना चाहा तो भगवान ने कहा मैं किसी राजा वाजा को नहीं मिलता, और दोबारा अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो जगन्नाथपुरी छोड़ के चला जाऊंगा, पहले ही बात में बोल लेते हैं दोबारा मुझे इस राजा को मिलने के बारे में आपको बोलना नहीं कुछ। और कौन विनती कर रहे हैं? साक्षात बृहस्पति का अवतार सार्वभौम भट्टाचार्य, वो राजा प्रताप रुद्र के राजगुरु थे, उनको चैतन्य महाप्रभु ने मायावादी स्तर से भगवान का भक्त बनाया था। हाँ, उनकी जगह अभी जाएंगे आगे विद्यानगर, उनकी वहां पर चर्चा करेंगे। तो वो सार्वभौम भट्टाचार्य इनके बारे में सिफारिश कर रहे थे, तो एक बार दो बार भगवान ने साफ मना कर दिया, दोबारा बोलेंगे तो निकल जाऊंगा। तो ये फिर आके बोला उन्होंने कि आप भगवान आपके बारे में ऐसा बोल रहे हैं, तो बोले क्या फायदा राजा बनने का, क्यों राजा बनूं मैं, अगर राजा का पद मुझे भगवान से मिलने से वंचित करता है तो राजा का पद भी बेकार है, मैं तो भिखारी बनूंगा तो अच्छा रहेगा। तो पूछते अभी क्या करूं मैं, कहा एक ही उपाय है, मतलब गारंटी मुझे पता नहीं है, लेकिन उपाय ऐसा है कि अगर उनके भक्तों की सेवा आप करेंगे, उनको भक्तों की भक्तों को प्रसन्न करेंगे, उनके अनुयायियों को, तो शायद वो प्रसन्न हो सकते हैं। तो प्रताप रुद्र महाराज ने सभी भक्तों का सेवा करना आरंभ किया, और सेवा करते करते फिर महाप्रभु जी को खबर मिलती रही कि राजा ने भक्तों के लिए रहने का व्यवस्था किया, राजा ने भक्तों के लिए भोजन का व्यवस्था किया, राजा ने सफर का व्यवस्था किया, इसका व्यवस्था किया, ये सुविधा दिया, वो सुविधा दिया। तो वो सुनकर मनी मन भगवान जगन्नाथ चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न होते रहे। फिर रथ यात्रा हुई, रथ यात्रा में भगवान ने बहुत लंबी कथा है, तो रथ यात्रा के बाद में भगवान जब थक गए चैतन्य महाप्रभु, तो एक वहां पर जगन्नाथ वल्लभ गार्डन है, वहां पर जाके भगवान ने विश्राम किया और आंख बंद करके भगवान के लीलाओं का स्मरण करते हुए शांत तरीके से भगवान चैतन्य महाप्रभु वहां लेटे हुए थे। उस समय सार्वभौम जी कहते हैं जाओ जाओ प्रसाद महाराज, जाओ अभी आप जाओ और उनके चरणों को दबाना आरंभ करो। तो राजा एकदम ऐसे एक लुंगी पहन के, सर पे फेटा बांधकर, एक गरीब व्यक्ति का वेश धारण करके महाप्रभु चैतन्य के पास जाते हैं और वो आंख बंद करके लेटे हुए हैं, उनके चरण दबाने लगते हैं। और उनके चरण दबाते समय राजा गीत गोविंद का गायन शुरू करते हैं, और वो सुनकर महाप्रभु चैतन्य बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। पूरा गीत गोविंद प्रताप रुद्र राजा के मुख से सुनते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, फिर आंखें खोलते हैं, बोलते हैं कौन हो तुम, वे वो अंतर्ज्ञानी भगवान है सब जानते हैं। तब वो कहते कि मैं इस देश का राजा हूँ प्रताप रुद्र, और तब वो महाराज प्रताप रुद्र को आलिंगन देते हैं, आलिंगन देते ही बड़े प्रेम का आविर्भाव उनके शरीर में होता है। तो ये है गीत गोविंद। हाँ हाँ, प्रभु जी ने कहा था कि मैं आऊंगा और आपके द्वारा लिखे गए गीत गोविंद का आनंद लूंगा। तो ये गीत गोविंद जी का जो रचना है वो पद्मा और महाराज पद्मा देवी ने और जयदेव जी महाराज ने यहाँ पर किया। उसकी भी कथा ऐसी है कि बड़े मग्न होकर वो जयदेव जी गीत गोविंद लिख रहे थे, उनकी पत्नी बड़े प्रेम से उनकी सेवा कर रही थी लिखने के समय। और एक प्रसंग ऐसा आता है, आप लोग इसमें से कितने लोग बरसाने में गए? अरे बहुत लोग गए, जय हो जय श्री राधे श्याम। तो बरसाने में एक मानगढ़ है, मालूम है ना आपको मानगढ़ बहुत बढ़िया जगह है। हाँ, जो लोग नहीं आए हैं वो 9, 10, 11, 12 फरवरी को हमारी यात्रा में आ सकते हैं, आपको ले जाएंगे मानगढ़ पे। हाँ, 12 तारीख फरवरी को बरसाने की यात्रा है, तो मानगढ़ में आपको दर्शन कराएंगे। वहां पर लीला ऐसी है कि भगवान राधा रानी को बोलते हैं कि आपका मुख जो है वो चंद्रमा के समान है। तो अभी यहाँ के माताओं को उनके पति ने बोला कि आपका मुख कमल चंद्रमा के समान है, तो बोले इतने खुश हो जाएंगे। लेकिन राधा रानी को खुशी नहीं हुई, बहुत गुस्सा आया उनको। वो बोले कि चंद्रमा के अंदर कई दाग हैं और हमारे सौंदर्य में कोई दाग नहीं है, कोई दोष नहीं है। चंद्रमा जो है कम कम होता है 15 दिन में, हमारे सौंदर्य में कोई घटत नहीं होती है, बढ़ते जाता है, हमारा सौंदर्य वर्धन होने वाला है, घटने वाला नहीं है। चंद्रमा को ग्रहण लगता है, हमारे सौंदर्य को कभी ग्रहण नहीं लगता है। चंद्रमा का क्या, चंद्रमा को क्या कहते हैं, मतलब चंद्रमा के ऊपर बहुत ग्रहों की नजर रहती है, जैसे किसी स्त्री पर बहुत पुरुषों की नजर रहती है, इसलिए चंद्रमा को पतिव्रता या चेस्टिटी के रूप में ऐसा निषिद्ध माना है। लेकिन हमारा जो चरित्र है वो पूर्णतः शुद्ध है, केवल आपके चरणों में समर्पित है। तो चंद्रमा की तुलना हमारे कैसे कैसे कर सकते हैं? ये सब कारण भी हम सहन सकते हैं, चलो कोई बात नहीं आपने बोल दिया, लेकिन एक कारण जो उसका है वो मैं कभी भी सहन नहीं कर सकती हूँ। मेरी जो प्रतिस्पर्धी गोपी है चंद्रावली, उसका आधा नाम चंद्र में है और उसका तुलना हमारे साथ कर रहे हैं, हम कदा भी सहन नहीं कर सकते, और वो रूठ गई। ऐसे कई कारण हैं उनके रूठने के, ये मैंने आपको एक बताया, लेकिन कई कारण हैं उनको रूठने के, और वो रूठती है केवल भगवान के प्रेम को बढ़ाने के लिए। हाँ, कोई स्वार्थी हेतु नहीं, उसको उसको मान कहते हैं, उसको क्रोध नहीं कहते। मान यानी दिव्य क्रोध, हाँ, मान यानी जो प्रेम को बढ़ाता है उसको मान कहते हैं, और अभिमान जो होता है वो दुनियादारी का होता है, यहाँ पर स्वार्थ के लिए, उसका स्वार्थ को बढ़ाने के लिए होता है। तो जब राधा रानी रूठ जाती है तो पहाड़ पर जाके बैठ जाती है, तो राधा रानी को मनाने के लिए भगवान बार बार उनके चरणों पे सर लगाते हैं, बार 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 बार, एक बार नहीं अनंत बार, और उनकी तरफ देखती भी नहीं है वो। फिर भगवान उनके चरणों में लोट पोट हो जाते हैं, रोलिंग इन द डस्ट, जहां पर वो चल रही है वहां पर वो लोट पोट होते हैं, फिर भी वो कुछ मानने को तैयार नहीं है। तो ये प्रसंग पे आ जाते हैं वो लिखने में, हाँ, कि राधा रानी रूठी हुई है और माधव जी उनके चरणों में लोटपोट हो रहे हैं और अपना सर जो है उनके चरणों में लगा रहे हैं। तो ये जब लिखने का, काव्य लिखने का समय आता है तो जयदेव जी को बड़ा संकोच होता है कि कैसे लिखूं, हमारे ठाकुर जी महाराज, हाँ, राधा रानी के चरणों में सर टेक रहे हैं, कैसे लिखूं कैसे लिखूं, थोड़ा संकोच हुआ उनको। लीला इतनी इतनी गहरी लीला है कि इसको वो काव्यमय नहीं कर पाए। हाँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधा रानी के चरणों पे भगवान सर टेक रहे, आप लोग क्या कर रहे हो? तो इसको वो लिख नहीं पाए, कई कई बहुत समय तक उसको लिखने का कोशिश कर रहे थे वो, लेकिन उनके स्फूर्ति नहीं प्राप्त हो रही थी उनको, तो उन्होंने लिखना बंद कर दिया। पत्नी से बताया कि मैं भी गंगा स्नान करके आता हूँ और फिर देखता हूँ। गंगा स्नान करने चले गए और कुछ मिनटों में वापस लौट के आए, कुछ ही मिनटों में लौट के आए, तो और आए तुरंत तुरंत कमरे में गए, लेखनी उठाई और तुरंत उस जो अधूरा था काव्य उसको पूरा कर दिया। बाहर आए, बोले तुरंत भोजन कराओ, भूख लग रही है। तो तुरंत पत्नी ने भोजन करवाया, बड़े प्रेम से भोजन खाया और दोबारा चले गए बाहर। दोबारा चले गए, कुछ देर फिर लौट के आए और बोल रहे भोजन कराओ, भूख लग रही है। अरे, पद्मावती बोल रहे अभी तो आप आए थे, अभी तो मैंने भोजन कराया आपको, और आप अंदर भी गए, कुछ आपने लिखना वगना पूरा किया, फिर भोजन किया, फिर गए थे, अभी तो कुछ मिनट ही हो गए हैं। बोले अच्छा, मैं तो नहीं आया था, मैं तो अभी स्नान करके आ रहा हूँ, देखो गमछा भी गीला, अभी मैं आ रहा हूँ, और भोजन कहाँ किया मैंने, भोजन तो किया नहीं। और वो अंदर गए, पत्नी ने कुछ कहा ना, अंदर गए तो अंदर गए और देखा तो वो जो अधूरा काव्य था, काव्य पंक्ति, वो पूरा कर दिया गया था, तो मैंने तो नहीं लिखा इसको। तब उनको समझ में आया कि स्वयं श्री कृष्ण भगवान जयदेव जी का, मतलब मेरा रूप धारण करके मेरे घर पे आकर उन्होंने जो मुझे संकोच हो रहा था उस काव्य को उन्होंने पूरा किया। बाहर आए और पत्नी को बोला, अरे पद्मा देवी, पता है तुम्हें, स्वयं श्याम सुंदर जी यहाँ पर आए और मेरे काव्य को पूरा किया, और तुम इतनी भाग्यवान हो कि तुम्हारे हाथ से पूरा भोजन पाया उन्होंने। ये सुनते ही पद्मा देवी बेहोश हो गई और जयदेव भी बेहोश हो गए। इतना बड़ा भाग्य, हमारे कुटिया में भगवान आए, बार बार उठे बार बार गिरे, इस दिव्य तरीके से इस जगह पर गीत गोविंद का काव्य लिखा गया है। हाँ, संत लोग जब लिखते हैं ना कुछ, कोई ऐसा फिल्मों का गाना नहीं है वो क्या होता है ना, वो यमक जोड़ने का इतना प्रयास करते हैं ना, वो वो ट को टो मिलना चाहिए, क को को मिलना चाहिए, ता को ता मिलना चाहिए, और रात रात वो उसके पड़े रहते हैं कि ता को ता नहीं मिल रहे और वो भौतिकता के वो फिल्मी गाने होते हैं, वो दुनिया गाते हैं, कुछ देर बाद वो मजा खत्म होता है उसके अंदर। लेकिन गीत गोविंद आप सैकड़ों सालों से लोग गा रहे हैं, अलग अलग ताल में छंद में उसको गाते हैं, उसका आनंद समाप्त नहीं होता है, क्योंकि वो भगवान के विषय में है। और ऐसे भक्त लोग जब लिखते हैं तो भगवान उनको प्रेरणा देते हैं, उनके हाथों से उनके दिमाग से दिव्यता को प्रकट करके ऐसे दिव्य ग्रंथ और काव्य लिखते हैं। ये तो महाकाव्य है, खंड काव्य है गीत गोविंद, और इस जगह पर वो गीत गोविंद का लिखान लेखन किया गया है। हम लोग कितने भाग्यवान हैं कि जहाँ पर गीत गोविंद स्वयं भगवान ने आकर कुछ पंक्तियाँ उसकी लिखी हुई हैं। तो ऐसा परम भाग्यशाली स्थान है जहाँ पर हम लोग बैठे हैं, और स्वयं नित्यानंद प्रभु भी स्वयं आकर जीव गोस्वामी को ये मौका दे रहे हैं समझाने का कि ये जगह जो है वो कितनी दिव्य जगह है। और कृष्ण लीला में ये जगह जो है ये खदीर वन है। कितने लोग खदीर वन को जानते हैं इसमें से? खदीर वन बहुत कम जानते होंगे, कोई बात नहीं। जैसे नवद्वीप धाम में जो जो लीला स्थली है वो वृंदावन के एक एक स्थली का रूपांतर है। हाँ, जैसे मैंने बताया आपको ना कि कुलिया पहाड़ जो क्या है, अरे याद नहीं आ रहा किसी को, अभी सुबह बताया था ना, वो वृंदावन में जो गोवर्धन है वो यहाँ का कुलिया पहाड़ है, जहाँ पर वराह देव ने अपना दर्शन दिया था सत्ययुग में। हाँ, हिरण्याक्ष को मारने के बाद दोबारा दर्शन दिया था, तो ये गोवर्धन है। कल जब हम गए थे तो वहाँ पर भी गोवर्धन था, वहाँ पर भी राधा कुंड श्याम कुंड था जो गोवर्धन के पास में है। ऐसे जगन्नाथपुरी कहाँ पर है? राजापुर सीमांत द्वीप। ऐसे फटाफट बोलना चाहिए आपको, हाँ, क्योंकि हम लोग सब दर्शन कर रहे हैं ना अभी। तो ये खदीर वन का दर्शन यहाँ पर है, यहाँ पर भगवान का जो वृंदावन का खदीर वन है वो यहाँ पर प्रकट है। और खदीर वन क्या है? खदीर वन उपनंद बाबा, जो नंद बाबा के बड़े भाई थे, उनका वन है वो। और वहाँ पर उपनंद बाबा की गायें जो है वो पानी पीती है, उसको कहते हैं खिरक। खिरक यानी जहाँ पर जलाशय होता है, उपनंद बाबा के गायें जो हैं वहाँ पर आके जल पीती हैं। और वहाँ पर खदीर यानी कत्था, कत्था का मतलब होता है ना वो पान में जो लाल रंग आता है ना, उसको कत्था कहते हैं, काथ कहते हैं मराठी में उसको। तो ये कत्था के वहां पर बहुत पेड़ थे उस समय, इसलिए उसका नाम खदीर वन पड़ा है। हम लोग के होता है ना आयुर्वेद में खदीरादी वटी, इसका गला खराब होता है उसको वो खदीरादी वटी देते हैं जिसके गला ठीक हो जाता है, तो वो खदीर यानी कत्था से बनता है। तो खदीर वन में क्या लीला हुई है? खदीर वन में भगवान की वत्सपा लीला हुई है। खदीर वन में संक्षेप में आपको बताऊंगा मैं, कि आपको पता चलेगा ना कि कोई कौन सा वन यहाँ पर प्रकट है। तो खदीर वन में भगवान वत्सपाल यानी कि जब उनको 5 साल नहीं हुए थे तो छोटे उम्र में उनको गाय के बदले में बछड़ों का भार दिया गया था। मैंने बताया ना ब्रह्मा जी के लीला में भी वो बछड़ों को लेकर खेल रहे थे, तो ब्रह्मा जी ने बछड़ों को चुराया है, वो भगवान की आखिरी वत्सपाल लीला है। उसके बाद 5 साल पूरे हुए भगवान के, उसके बाद भगवान को नंद महाराज ने बड़ी बड़ी गायों का भार सौंप दिया। तो ये बाल बछड़ों को लेकर खदीर वन में गए घूमते घूमते, और क्या रूल था वहां पर वत्सपाल लीला का, कि बछड़ों को लेकर केवल वहां तक जाना है जहां जहां तक नंद भवन के ऊपर जाएंगे तो देख सकते हैं उनको। नंद भवन के ऊपर चढ़ेंगे नंद बाबा यशोदा मैया, और चारों ओर जहां तक उनको नजर आएगा वहां तक जाना है बस, क्योंकि दिन में बालक कहां पर खेल रहा है, कभी देखने का भाव आ गया तुरंत जाके देख सकते हैं, बस उसके बाहर जाना नहीं है, वही सीमा है उनकी। तो खदीर वन भी उसी सीमा के अंदर है। तो वहां पर गए बालक को लेकर, देखा उस दिन जैसे पानी पिया सरोवर का, देखा तो अरे सरोवर के किनारे में इतना बड़ा एक सफेद रंग का पहाड़ समान पक्षी बैठा है, इतना भयंकर पहाड़ जैसा बड़ा पक्षी, कि उसका सर जो है, चोंच और सर जो है वज्र के समान कठिन थी, और वो बादलों में छुपी हुई थी उसका सर और चोंच, इतना विशाल पहाड़ जैसा पक्षी कभी देखा नहीं उन्होंने आज। और वो आश्चर्य कर ही रहे थे तो उतने में उस पंछी ने चोंच खोली और कृष्ण भगवान को निगल दिया, कुछ समझ आने के पहले ही कृष्ण भगवान को निगल लिया उसने। तो सब लोग चिल्लाने लगे, अरे खाए रो है, मतलब खा रहा है भगवान, खा लिया, ये ब्रजभाषा है, खाए रो है। तो उसका नाम पड़ा खायरा, खदीरवन संस्कृत नाम है, लोकल नाम है खायरा, जहां पर बकासुर ने भगवान को खा लियो तो वो खा रहा है ऐसे पुकार रहे थे सब ब्रजवासी सब। तो ये देख करके हमारे त्राता भगवान ये बकासुर वहां पर पैदा हुआ था ना बगुले के रूप में, सबने सबके लिए उसने हाहाकार मचा दिया था, सबको परेशान कर दिया था। तो उसको मारना चाहिए था तो उसने भगवान को निगल लिया, मतलब भगवान खत्म हो गए। तो देवी देवता बहुत डेस्परेट हो गए एकदम। तो लंबी लिस्ट है उसकी, उसको नहीं बताएंगे। ब्रह्मा जी, यमराज, इंद्र, चंद्र, वरुण, वायु, अग्नि, भद्रकाली देवी, सब लोगों ने अपना अपना जो दिव्य अस्त्र है उनके पास में वो लेकर उस पर प्रहार किया, लेकिन सभी लोगों के अस्त्रों का वशस्त्रों का उस पर कुछ प्रभाव नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल यमदंड जो है, यमदंड से कोई नहीं बचा आज तक। वो यमदंड भी टूट गया इस पर प्रहार करने पर, उसको कुछ नहीं हुआ। ब्रह्मदंड यमदंड के भी ऊपर है, वो ब्रह्मा ने चलाया, कुछ भी नहीं हुआ उसको। वायव्यास्त्र, अग्नेयास्त्र, निहारिकास्त्र, तलवार और जितने भी अस्त्र हैं, पशुपतास्त्र, शिवजी का त्रिशूल, चक्र, सब कुछ हुआ उसके ऊपर, किसी का उस पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। उसके बाद में जब सारे देवता लोग परेशान हो गए तो ये इतना गुस्सा आया इसको बकासुर को, एक साथ में उसने सारे देवताओं को खदेड़ दिया पूरा। आकाश में क्या सीन है, चारों दिशाओं में देवता भाग रहे हैं और एक पंछी उनको भगा रहा है। ऐसी असहाय अवस्था हो गई, सब दीन और जीर्ण हो गए, क्या करें अभी। तो उस समय भगवान जो अंदर थे, इतनी देर तक आराम कर रहे हैं अंदर उनके, है ना, मजा ले रहे हैं उसके शरीर के अंदर, उसको लग रहा है कि मर गए, वो एक्सपांड होते हैं और गर्म भी हो जाते हैं, उष्ण। एक तो शरीर को बढ़ाते हैं, वृद्धि करते हैं और वो उष्ण हो जाते हैं। जैसे ये होता है तो उसकी आंखें मानो उसके सर के बाहर निकलने लगती है, इतना प्रेशर बढ़ता है अंदर, अग्नि से जलता है, तुरंत भगवान को उगल लेता है, वो बाहर फेंक देता है, दोबारा पकड़ने को जाता है। लेकिन भगवान इस समय तुरंत पीछे जाकर उसकी पूंछ को पकड़ते और गोल गोल आकाश में घुमाते हैं। फिर बड़ा घनघोर युद्ध होता है, भगवान उसको घुमाते हैं, अचानक भगवान उसकी पैर, अपना पैर उनकी एक चोंच पर रखते हैं और एक चोंच को पकड़कर पूरा फाड़ देते हैं उनको। सबके सामने बकासुर की मृत्यु हो जाती है, सब देवता भागे हुए वापस आते हैं भगवान का गौरव करने के लिए और पुष्ट पुष्टि करने के लिए। देवताओं का काम ही है टेंशन लेना, हार जाना, भगवान के पास शरण लेना, फिर वापस पुष्प पुष्टि करना। ऑलवेज टेंशन, इसलिए मत समझना कि देवता लोग में जाएंगे तो आनंद करेंगे आप। हाँ, राक्षस लोग वहां पर भी आते हैं, उनको अपनी जगह से भगा देते हैं पूरा। इसलिए भौतिक जगत में आ ब्रह्मा बोनार लोका, आ ब्रह्मा मतलब ब्रह्मा जी से लेकर नीचे पाताल लोक तक कहीं सुख नहीं है, ध्यान रखना। आ ब्रह्मा पुनार लोका पुनरावृत्तिनो अर्जुना, कहीं भी जाओ, ब्रह्मा बनो, इंद्र बनो, या तो पाताल में जाओ, कहीं भी जाओ, जन्म मृत्यु का दुख लगा रहेगा तुम्हारे बीच में और कोई शत्रु आएगा तंग करते रहेगा, ये बात समझ लेना। इसलिए मेरी भक्ति करना, ऐसे भगवान ने उनको आदेश दिया था। तो जब मरा वो तो उसकी शरीर से जो ज्योत निकली आत्मा की, वो कृष्ण भगवान के शरीर में विलीन हो गई। तो ये कथा नारद मुनि एक भगवान के भक्त हैं राजा बहुलाश्व उसको बता रहे हैं। तो बहुलाश्व का आश्चर्य हुआ, अरे नारद मुनि जी ये कैसे हुआ, इतना भयंकर राक्षस था वो, कैसे उनका शरीर का आत्मा जो उसके विलीन कैसे हो गई, इतना भाग्य कैसे प्राप्त हुआ उसको। तो उन्होंने कहा कि ये राक्षस था एक हयग्रीव नाम का, वो बड़ा भयंकर था, उसने ब्रह्मा जी को तपस्या करके वरदान मांगा था कि उसका सर घोड़े का था और शरीर मनुष्य का था। उसको पता था कि ब्रह्मा जी के 84 लक्ष योनि में ऐसा कोई योनि नहीं है जो सर घोड़े का हो और शरीर आदमी का हो, जो मुझे ऐसा होगा वो मुझे मार पाएगा, ऐसा मुझे वरदान दो, मतलब कोई नहीं मार पाएगा। फिर भगवान ने स्वयं हयग्रीव का अवतार लिया सत्ययुग में, जिसके सर घोड़े का था और शरीर आदमी का था, और उसका वध कर दिया। उसको एक पुत्र था, उसका नाम था उत्कल। वो उत्कल पुत्र जो था वो इतना शक्तिशाली था, तपस्या करके उसने स्वर्ग के 100 साल तक सभी देवताओं को खदेड़ कर वहां पर राज्य किया था। जब तक वो था देवता सब छुपे हुए थे, और अपनी शक्ति से और रूप से और ऐश्वर्य से मदमस्त होकर एक बार वो जाजली मुनि के आश्रम में आया और मद में था बहुत, और जहां साधुओं का निवास होता है वहां पर सब द्वैर द्वेष हिंसा सब खत्म हो जाती है। हिंस प्राणी भी होते हैं ना, वो जैसे शेर जो है वो हिरण को गले लगाता है, और कोई किसी की हत्या नहीं करता है, जो शत्रु प्राणी होते हैं वो मित्रता करते हैं, ऐसे साधुओं का होने का प्रभाव होता है। जहाँ साधु रहते हैं वातावरण में सब ऐसा द्वेष वेष नष्ट हो जाता है। तो उनके आश्रम में ऐसे सब लोग सब प्रकार के प्राणी बड़े प्रेम से रहते थे, और एक कुएं के अंदर एक पौंड के अंदर उन्होंने मछलियों को रखा था, वहां पर भी कोई किसी को कष्ट देता नहीं था। यहां पर आके बैठ गया वो उत्कल, उसके पास एक बड़ी मुरली थी छेद वाली, उसको पानी में रखा, कोई गलती से मछली उसके अंदर आई, निकाला, खा लिया उसको, ऐसे करने लगा वो। दोबारा डाल दिया उसके अंदर, कुछ मछली घूमते घूमते उसके अंदर आ गई, उसको खोल लिया, मुंह में डाल दिया। तो जाजली मुनि वहां पर आए, उन्हें कहा कि हमारे आश्रम में कोई भी किसी की हत्या नहीं करता है, ये काम बंद करो, यहाँ पर सब लोग प्रेम से रहते हैं, तुम यहाँ पर हत्या क्यों कर रहे हो। तो फिर भी वो सुन रहा है, फिर भी उसने मुरली वापस डाली, कुछ मछली आई, फिर मुंह में डाल दिया। तो मुनि ने कहा कि बड़ी मछली खाने का दिल कर रहा है तुझे, चल तुरंत बगुला बन जा, शाप दे दिया उसको। और एक क्षण में वो सुंदर ऐश्वर्य संपन्न हाँ जो असुर था वो एकदम बगुला बन गया, तुरंत दिखा रही चेंज हो गया सब। ये तो नम्र हो गया, उसका जो अहंकार था अपनी शक्ति का, बल का, सुंदरता का, खत्म हो गया। मुनि के चरणों में गिरा बगुले के रूप में, बोले माफ करो, कुछ करो बचाने के लिए, पर कोई बात नहीं, अभी तुम्हारी भावना सही हो गई है, अहंकार में आए थे, अभी अहंकार शून्य हो गई हो, चलो कोई बात नहीं। जब 28वें कल्प में द्वापर के अंत में जब वैवस्वत मुनि के राज्य के अंदर जब कृष्ण भगवान अवतार लेंगे तो उनके द्वारा तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो फिर वो बगुला क्यों नहीं उसको देवता लोग मार सके, क्यों ना यम दंड से भी वो मर नहीं सका, क्योंकि उसको वरदान था कि कृष्ण के द्वारा ही उसका उद्धार होगा। तो सब देवता हार गए, उसको कुछ नहीं हुआ, फिर भगवान ने उसका वध किया, फिर उसका उद्धार हो गया। तो साधुओं का जो शाप होता है ना, वो कभी शाप नहीं होता है, वो वरदान होता है। बगुले के रूप में उसको कृष्ण के हाथ से मृत्यु प्राप्त हुई और उसकी मुक्ति हो गई। तो वो जो खदिर वन है उसमें भगवान ने बहुत सुंदर सुंदर बाल लीलाएं की हैं, अपने गौचारण, गायों को लेकर चराना, वहां पर जो रोज का आनंद था ग्वाल बालों के साथ में, वो खदिर वन में भगवान ने अनुभव किया है, और वो खदिर वन यहां पर प्रकट है, इसलिए मैंने आपको ये कथा बताई। जय जय श्री राधे श्याम। बहुत बहुत धन्यवाद सबका, आप लोगों ने थोड़ा सोते थोड़ा जागते कथा सुना, बहुत धन्यवाद है आपका। और उम्मीद है कि प्रसाद की गाड़ी आ गई है और सबको प्रसाद मिलेगा। तो एक बार सब लोग जय जयकार करो, जय देव गोस्वामी महाराज की, पद्मा देवी की, गौर गदाधर भगवान की। और एक बताना भूल गया मैं आपको, प्रभुपाद जी के जो गुरु महाराज हैं, हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, उन्होंने यहाँ पर ये गौर गदाधर की जो मूर्ति है उसको स्थापन किया। और उनके एक ब्रह्मचारी शिष्य थे नित्यानंद दास बाबा जी महाराज, वो अपने उम्र के 17 साल की उम्र में यहाँ पर आए, और उन्होंने संन्यास नहीं लिया और ना विवाह भी नहीं किया। का कारण ये था कि संन्यास लेने के बाद में जगह जगह घूमते हुए प्रचार करना पड़ता है, शादी करने के बाद में फिर प्रपंच में पढ़ना पड़ता है, इसलिए वो ब्रह्मचारी रहे और अपने उम्र के 90 साल तक यहाँ पर ही रहे, और अपने गुरु महाराज के आदेश के अनुसार गौर गोदाधर का सेवा किया उन्होंने, और बाद में उनका शरीर समाप्त हो गया 90 साल की उम्र में। तो नित्यानंद दास बाबा जी ने इस जगह को बनाए रखा है, उनकी कृपा से आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, और गौर गदाधर जी अभी भी यहाँ विराजमान हैं, तो उनकी भी जय करेंगे। नित्यानंद दास बाबा जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम गौरांग गौरांग। जैसे रात को श्रीधर कोलवेचा पुकारते थे ना, लोगों को लगता था क्या था, भूख लग रही है बेचारे को, है ना, आपको लग रही है भूख, कितने लग रही है, पुकारो पुकारो गौरांग। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।